श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो, गीता का सार श्लोक क्रमांक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता का। बहुत सारे इस दरवाजे को बंद करते हैं, बहुत सारे भक्त उस बात को समझते भी हैं, बाहर के लोग भी इस बात इस श्लोक को काफ़ी जानते हैं। तो शब्दार्थ को देखेंगे, वासांसी वस्त्रों को। क्या आप लोगों को इस संस्कृत समझ में आ रही है? सीधी सी संस्कृत समझ में आ रही है, वासांसी मतलब कपड़े, इस प्रकार से कपड़े। जीर्णानी, जीर्ण मतलब खराब हो जाते हैं। यथा विहाय मतलब त्याग कर, नवानी मतलब नए, है ना, यानी कि जैसे जिस प्रकार से पुराने कपड़े त्याग करके व्यक्ति नए कपड़े धारण कर लेता है, गृहणाति ग्रहण करता है, नरह अपराणी अन्य, तथा शरीराणी विहाय जीर्णानी अन्यानी संयाति नवानी देहि। तो आप लोग अगर संस्कृत देखेंगे तभी समझ में आ रहा है ना क्या है अर्थ। इस प्रकार से पुराने वस्त्रों को त्याग करके व्यक्ति नए वस्त्र ग्रहण करता है और खुशी का अनुभव करता है। ये बात इनबिल्ट है, क्योंकि भगवान इससे पहले वाले श्लोक में बोल रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है और इसको कभी मरवाया नहीं जा सकता। जो ज्ञानी पुरुष है वो जानता है कि इसको ना तो मारा जा सकता है ना कोई उसको मार सकता है। तो अपना धर्म करने में, कर्तव्य करने में कभी कोई व्यक्ति चूकता नहीं। तो यहाँ पे बता रहे हैं दूसरे तरीके से ये समझाते हुए कि देखिए, ये जो आपके कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, जो भी मरेंगे ये केवल अपने वस्त्र परिवर्तित करेंगे। जैसे इस जगत में आप देख रहे हो वस्त्र परिवर्तित होते हैं और नया वस्त्र प्राप्त करके खुश होते हैं ना, नहीं तो आप लोग सप्लाई लेने के लिए क्यों जाते हैं? जब नया धोती कुर्ता मिलता है तो आप लोग खुश होते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक भक्त को धोती कुर्ता दिया तो थैंक यू बोलते हैं कि हम कहते हैं अरे क्या नया वस्त्र दे दिया, थैंक यू बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार से जब नया शरीर मिल जाएगा, अच्छा शरीर मिल जाएगा, तो उसके लिए व्यक्ति को सुखी होना चाहिए। तो इस आर्गुमेंट को भी भगवान दे रहे हैं समझाते हुए, आर्गुमेंट नहीं कहना चाहिए, ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान के, ज्ञान से क्या लाभ हो रहा है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे अर्जुन को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप धर्म करने के लिए, अपना जो क्षत्रिय धर्म करने में आप चूकिए मत। ठीक, इस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अब आपसे एक प्रश्न क्लियर कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को उत्तर देना होगा, एक व्यक्ति को उत्तर देना होगा कि जब हमको नए कपड़े मिलते हैं तब हम खुश होते हैं। इस जीवन में भी जब हम नए नए शरीर मिल रहे हैं हमको तो भी हम दुखी नहीं होते। एटलीस्ट हम छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, बड़े होने का अर्थ क्या है, नया शरीर मिल रहा है तो भी हम दुखी नहीं होते। लेकिन जब देह का अंतरण होता है तब दुखी क्यों होते? ये इम्पोर्टेंट बात है कि शरीर में आसक्ति, शरीर में आसक्ति हमेशा है, हमेशा शरीर अच्छा लगता है। अगर गैंग्रीन से भी व्यक्ति दुखी होता है, गैंग्रीन से तो ना बहुत बड़ा घाव हो जाता है, सही नहीं होता, कीड़े पड़ रहे होते हैं, फिर भी वो शरीर त्यागना नहीं चाहता, शरीर में इतनी आसक्ति होती। क्यों आसक्ति है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। बहुत खतरनाक है एक्चुअली। तात्पर्य, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमरावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है, इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। एक आप दूसरी दृष्टि से देखिए, अगर बार बार समाज में ये बोला जाए कि इनका देह का अंतरण हुआ है, फलाने क्या आज एक व्यक्ति का देह का परिवर्तन हुआ है, खाली शब्द चेंज कर दिया जाए, जो हम बोलते हैं इसको खाली परिवर्तित कर दिया जाए, तो उतना दुख नहीं होगा। और हम लोग क्या बोलते हैं, फलाने के व्यक्ति ख़त्म हो गए, ये जो ख़त्म होने की भावना है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि हमें शाश्वत हूँ तो ये ख़त्म होने की भावना ही मेरे लिए बिल्कुल विदेशी है, फ़ौरन जिसे कहना चाहिए बिल्कुल। हाँ आश्चर्यजनक तो कह सकते हैं और बहुत ही डरावनी है कि मैं ख़त्म हो गया। आपने कभी सोचा इस तरह से, अगर घर में ये बोला जाए कि भाई हमारे बाबा जी का देह का अंतरण हो गया, बोला जाता है देह त्याग हो गया, देह त्याग से क्या महसूस होता है, दोबारा और कोई देह नहीं मिला है ना। अगर बोला जाए उनका देह परिवर्तन हो गया तो कोई तो डर नहीं लगेगा। ऐसे बोला जाए भाई आप वहाँ रह रहे थे तो वहाँ अभी हमने घर परिवर्तन कर लिया, बोले गृह त्याग कर लिया है तो घबराहट होगी ना, समझ रहे हैं। अगर बोला जाए कि भाई मेरे पिताजी ने घर चेंज कर लिया, माँ को आप बताइए कि घर पिताजी ने घर चेंज कर लिया, माँ मान लो गाँव में रह रही है, पिताजी सिटी में रह रहे हैं, अब बोली कि माताजी पिताजी ने घर परिवर्तन कर लिया है तो खुश हो जाएंगे, अच्छा घर है दूरा घर है, लेकिन बोले घर त्याग दिया है तो घबरा जाएंगे ना, क्योंकि छोड़ने की भावना रहती। ये भी मैं सोच रहा हूँ, उससे पहले कभी सोचा नहीं इस तरह से। तो ये शब्दों की वजह से, जो शब्द हम बार बार सुनते हैं उसकी वजह से मोह जनित हो जाता है। और भगवान कौन से शब्द यूज़ कर रहे हैं बार बार, देह का अंतरण, जो देह का अंतरण करता है क्या है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्थितम हुए। तो किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उससे भी हमारे हृदय में उसी प्रकार की भावना जगे। तो इंटरेस्टिंग, अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण, देहांतरण, स्थानांतरण, एक स्थान से आत्मा को उठाकर दूसरे शरीर में रख दिया गया है, परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा की कृपा से संभव हो जाता है, इसका अर्थ ये है कर्मणा दैव नेत्रेणा, हम जो कार्य कर रहे हैं परमात्मा उसको नोट करते रहते हैं और फिर हमारी इच्छाओं को नोट करते रहते हैं, इच्छा और कर्म उसका इक्वेशन बिठा करके फिर अगला शरीर देते हैं। मान लीजिए किसी की इच्छा है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो उसके फिर कर्म भी ऐसे होने चाहिए, तो फिर उन दोनों के सामंजस्य बिठा करके उसे कुछ व्यवस्थित दी जाती है। तो कैसे लोगों को शरीर मिलता है, क्या दो शब्द मैंने बताया आपको, संस्कृत बोलिए कर्मणा दैव नेत्रेण, कर्मों के कारण या कर्मों के द्वारा और दैव के द्वारा। ये भी नहीं कह सकते कि आप अपने भाग्य विधाता हो पूरी तरह से, कर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन कर्म का रिजल्ट देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान कर्म के नियमों का पालन करते हैं लेकिन उसको करने के लिए बाध्य नहीं है, अगर भक्ति कर ली तो सब खत्म कर देंगे। है ऐसा कर्म है जिससे भगवान मजबूर हो जाते हैं, कौन सा कर्म है, शुद्ध भक्ति, श्री कृष्ण आकर्षणी, आज प्रभु समझा रहे थे बहुत सुंदर बात, आज प्रभु जी ने समझाई थी कि शुद्ध भक्ति से सभी जीवात्माओं के प्रति प्रेम होता है। एक्चुअली ये समझा रहे थे कि शुद्ध भक्ति का एक गुण है साधन अवस्था में शुभदा, और शुभ का अर्थ समझा रहे थे, शुभ का अर्थ ये था कि सभी जीवात्माओं के प्रति प्रेम और सभी जीवात्माओं का उस व्यक्ति के प्रति प्रेम। तो ये बात मुझे पहले से भी पता थी, आज सुनते में समय सोच रहा था कि अगर इस प्रकार से हम सभी लोग शुद्ध भक्ति का अभ्यास करें तो कितना सुंदर परिवार, कितना सुंदर वातावरण में हम जिएंगे, जहाँ हर व्यक्ति के अंदर ये गुण है कि वो सबको प्रेम करता है और हर व्यक्ति के अंदर ये गुण है कि वो उसको प्रेम करता। अगर हम सभी लोग अच्छे से भक्ति करें तो ये गुण अपने आप ही डेवलप होने लग जाएगा, कितना अद्भुत है ना। और ऐसे समाज को कौन छोड़ के जाना चाहे, तो ये हमारे इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली सभी पर दायित्व है कि शुद्ध भक्ति का अभ्यास करें। अर्थात जब हम भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उद्देश्य यही होना चाहिए कि केवल कृष्ण संतुष्ट हो, उसके बदले में मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और ये इंटरेस्टिंग है कि जैसे आज उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम, आपका क्रेडिट कार्ड होता है आपके पास, उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो। कार्ड एक छोटी सी चीज़ है लेकिन उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ खरीद सकते हैं। ऐसे ही भक्ति जैसे जैसे बढ़ेगी तो बहुत ही सुख सुविधाएं भी आने लग जाएंगी, लेकिन हम उसका उपयोग अपनी इंद्रियति के लिए ना करें, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। इसके लिए प्रभु जी समझा रहे थे यहाँ पे जब क्लास दिया था कि विवेक के द्वारा भक्ति से उत्पादित अनर्थों से बचना चाहिए। मान सम्मान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इससे बचना चाहिए, झूठा चीज़। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि मान सम्मान की वजह से अपनी सेवा रोकनी नहीं चाहिए और अपनी सेवा करनी नहीं चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मान सम्मान की वजह से, मान सम्मान की अपेक्षा की वजह से हमें अपनी सेवा करनी नहीं चाहिए और सेवा रोकनी नहीं चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर मान नहीं मिलेगा तो मैं क्लास नहीं दूंगा, किसी ने माल नहीं डाली तो मैं क्लास नहीं दूंगा, ये भी गलत है। और अरे बहुत लोग मुझे जान जाएंगे, मेरा नाम बहुत हो जाएगा, मुझे प्रसिद्ध हो जाऊंगा, इसलिए प्रचार नहीं करूंगा, ये भी नहीं होना चाहिए। खैर, परमात्मा पूर्ण आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान हमको दोनों कार्य करने के लिए शरीर दिए हैं, भोग करने के लिए और योग करने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं, हमारी इच्छा को जानते हैं, मैं भोग करना चाहता हूँ, तो भगवान नहीं चाहते हैं फिर भी एक मित्र के तरह कहते हैं तुम्हें करना चाहते हो ठीक है, ये मैं फैसिलिटी दूंगा, लेकिन साथ साथ ये व्यवस्था भी करते हैं कि भक्तों का संग या किसी तरह से उसको भक्ति का ज्ञान भी मिलता रहे, ताकि कभी ना कभी तो वो उपयोग करके, सुन करके उसकी तरफ उमड़े। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। उनमें से एक पक्षी अणुआत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। ये लाइन कितनी सुंदर है कि भगवान हमारे कार्यकलापों के साक्षी हैं। और आप एक चीज़ देखो कि कितना भोग हम करते रहे हैं कितने जन्मों से, कितना भगवान को नेग्लेक्ट करते आए हैं, उसके बाद भी भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में हैं, वेट कर रहे हैं, कभी तो मेरी तरफ मुड़ेगा, कुछ तो ऐसा कार्य कर देगा मेरी तरफ मुड़ने का, उसके बाद खींचता लेके चलाऊंगा मैं। ये बात बहुत गहरी है। जैसे अभी आप क्लास के बाद मान लीजिए कुछ जप करते हैं या पुस्तक पढ़ते हैं या कोई भी भक्ति की सेवा कर रहे हैं भगवान की, तो भगवान हृदय में ही बैठे हैं और देख रहे हैं, देखो ये अब जीवात्मा मेरी तरफ बढ़ रहा है, ये मेरी पुस्तक पढ़ रहा है, मेरे ज्ञान को सुन रहा है, और भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई आपको बहुत बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, अकेले आप रूम में हैं तब भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग। और हो सकता है आप दुनिया में सबको प्रसन्न करें और भगवान को प्रसन्न ना करें। आप मतलब हम सभी। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, एक पक्षी है जो खा रहा है, एक फल खा लिया, अब बोर हो गया, दूसरा फल ट्राई करता हूँ, अब अच्छा हो गया बहुत, दूसरा फल ट्राई करता हूँ, तो वो जो दूसरा दोस्त पक्षी है वो साथ साथ जा रहा है और देख रहा है कभी तो मेरी तरफ मुड़ेगा ये। और भगवान के इस आग्रह को हम समझ नहीं पाते। रूपा जी समझा रहे थे कि कोटि कोटि माताओं और पिताओं का जो वात्सल्य है, मैं शायद महाराज का सुन रहा था, उससे भी अधिक मान लीजिए भगवान का प्रेम है और वात्सल्य स्नेह है हमारे प्रति। यस, सारे संसार के साथ सारे माता पिताओं का प्रेम, अब एक तो एक कह सकते पलड़े में रखिए फिर भी भगवान का है। और अद्भुत बात है, भगवान का प्रेम सभी जीवात्माओं के प्रति इतना असीमित रूप से, अभी ये इसका अगर छोटी सी झलक भी व्यक्ति को मिल जाए तो कृष्ण को ही समर्पित समर्पण करे। यस यस, कहाँ थे हम लोग? अणु हाँ, जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यंत अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही एक वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद समान रूप में इसकी पुष्टि करते हैं। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशीया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यन्त्यमीशमस्यः महिमानाम इति वीत शोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे शोक का और दुख का एकमात्र कारण है भोगों में एब्जॉर्प्शन। जितना भोगों में एब्जॉर्प्शन होगा, अभिनिवेश होगा, क्या बोलेंगे, और कोई हिंदी शब्द आता है आपको, मतलब डूबे रहेंगे, मैं चेतना उसमें डूबी रहेगी कि भोग करना है, उतना ही हम चिंताओं से ग्रसित हो जाएंगे। ब्रह्मचारी जीवन में एक बहुत सुंदर फैसिलिटी एटलीस्ट हमको दी गई है कि हम भोगों से विरत रहें, बल्कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि भोगों से दूर रहें। और ये कोई तपस्या नहीं है, सही बताऊँ तो इस शोक से दूर रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि भोग तीन चीज़ें उत्पन्न करते हैं। रोग तो उत्पन्न करते ही हैं, भोग की वार्ता क्या उत्पन्न करती है, शोक, मोह और भय, क्योंकि उन्हीं से हमारा अभिनिवेश बढ़ जाता है कि हम ये शरीर हैं। आप ये कहें कि ये रसगुल्ला बहुत बढ़िया है, ये भोग है, लेकिन आप कहें प्रभु जी ये प्रसादम है, मतलब अगर प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रभु जी प्रसाद बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, तो ये भक्ति हो जाती। कार्य वही है ना, कि आज मैं आज सुबह का दोपहर का प्रसाद भी बहुत अच्छा बना, तो मैंने भक्त को अनुमोदन किया, प्रभु जी आपने बहुत अच्छा प्रसाद बनवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मैं विचार कर रहा था, अगर ये आप किसी होटल वाले के पास जाकर बोले आपने पिज्ज़ा बहुत अच्छा बनाया, तो ये भोग की वार्ता है। वार्ता वही है लेकिन भोग की वार्ता है। वार्ता छोड़ दीजिए, आपने बोला नहीं, खाली आपने अप्रिशिएट किया कि रसगुल्ला बहुत अच्छा है, भगवान का ऑफर नहीं है, भोग है, भोग है, और आप फंस जाएंगे। और वही रसगुल्ला जो भगवत अर्पित है, वो ही रसगुल्ला बहुत अच्छा है, ये भी नहीं मालूम चला कि प्रसाद है, फिर भी आप क्योंकि कृष्ण को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो भक्ति में प्रगति हो जाती है। अद्भुत है ना, यानी कि हमारी जो इंद्रिय तृप्ति की भावना है, ये प्रवृत्ति है, उसे में कुछ छोड़ना नहीं है एक तरह से देखा जाए। ओ ये कीर्तन कितना सुंदर गा रहे हैं, यही भक्त, ये लोग कितने सुंदर अच्छे कपड़े पहने हुए, तो यानी कि सुंदरता को देखने की भावना, सुंदर गीत सुनने की भावना, जो भी हमारे कानों या फिर हम लोगों को सुबह इत्र लगा जाता है, हाँ अच्छा है, अभी तक खुशबू आ रही, बहुत अच्छा है ना। अब पहले हम लोग सेंट पेंट लगाते तो हाँ बड़ा अच्छा पेंट है, कोलोन कौन सा कम डेनिम कंपनी का जो भी था, तो वो भी हम लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, अभी कौन सा परिवर्तन किया, यही बोलते ना अच्छा है। लेकिन ये भगवान से संबंधित अनुमोदन है, इससे भगवान की भक्ति बढ़ जाती, इसीलिए सुसुखम बोला जाता है भक्ति भक्ति। एक बार भी किसी ने खुशबू ली और कहा बहुत अच्छा है, वो हमेशा हमेशा के लिए इसका क्रेडिट डिपॉजिट हो गया, और कभी इसमें से डेबिट नहीं होता है। कितना अद्भुत है ना भक्ति, तो इन लोगों को सिखाना चाहिए। शोक करने की जरूरत नहीं है भक्ति में, क्योंकि भक्ति में पहली बात यह कि आपकी इंद्रियों के कार्य नहीं परिवर्तित होते, वही कार्य। जैसे एक बार वृंदावन चंद्र का क्लास था, व्यक्ति मैं बाहर, क्लास खत्म ही हुआ था, बस बाहर व्यक्ति आया था, बोला कितना मीठा बोलते हैं, उसको क्लास समझ में आया या नहीं आया, वो प्रभु जी की आवाज़ बहुत अच्छी लगी उसे, क्या उस पता नहीं क्या समझ में आया कि बहुत मीठा आवाज़। तो उसने एक बात को अप्रिशिएट किया और वहीं से बहुत तीव्र प्रगति उसकी चालू हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है, क्षमा कीजिएगा, अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवद्गीता समझ रहा है, इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। कितनी सुंदर बात है, भगवान अगर आपके सामने भी हों तो उनकी महिमा कैसे मालूम चलेगी भैया, सुन करके सुनना पड़ेगा। और भगवान खुद बोल रहे हैं, मैया सक्त मना पार्था योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। भगवान सामने हैं, आप उनकी शरण में डायरेक्ट जा सकते हैं ना, लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, तो मेरे सामने बोल रहा हूँ, मेरी कैसे शरण लेकर के मुझ में कैसे आसक्ति बनाओगे, मुझे सुनो। तो जो व्यक्ति भगवान से साक्षात सुन रहा, साक्षात है, उसको सुनने की आवश्यकता है, तो हमें तो सुनने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, तो कितना अधिक सुनने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण से बात कर रहे हैं, मित्र हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उनको भगवान बोल रहे हैं कि मुझ में आसक्ति बढ़ाने के लिए क्या करो, मुझसे सुनो या बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव, प्रमाणिक प्रतिनिधि से सुनो। इसीलिए पुस्तकों का अध्ययन श्रवण बहुत आवश्यक हमारी भक्ति को स्थिर, आसक्ति को स्थिर देने के लिए। लास्ट पैराग्राफ, यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलिवेदी पर यह धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोगों को प्राप्त होता है, अतः अर्जुन को शोक करना युक्ति संगत नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट श्लोक बहुत मज़ेदार है, तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे।